पृष्ठ संख्या 20। जागृत में सुप्ति थी, शेफालिका, स्मृति चुंबन इत्यादि कविताएं इसी रचना स्तर की सृष्टि का संकेत देती हैं। संवेदना के लिहाज से आगे के संग्रहों में अनेक गीत इसी रचना स्तर के अंतर्गत आते हैं। जूही की कली में प्रिय के आगमन पर भी न जागना और प्रिय के हाथ लगाए जागी, ऐसी मैं सो गई अभागी की ध्वनि एक दूसरे धरातल पर होने के बावजूद एक दूसरे की याद दिलाती है। या एक करती है अस्तवन मंद पवन से गंध कुसुम कलिकाएं भवन से। दो कैसी थी रात बंधु थे गले गले। तीन प्रियामिनी जागी अलस पंकज दृग अरुण मुख तरुण अनुरागी। जैसे सैकड़ों गीतों में भी प्रकांतर में इसी भाव संवेदना का विकास हुआ है। इस तरह आध्यात्म भक्ति गहन प्रेम अवसाद उदासी खिन्नता आत्म साक्षात्कार या प्रकृति की छलछलाती हुई छवि के प्रति कवि की प्रगाढ़ भाव संवेदना और उसकी ये भिन्न भिन्न ध्वनियाँ अर्थों और रंगों की काव्य दृष्टियाँ और रचना स्तर लगातार प्रारंभिक कविताओं से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। राष्ट्रीय उद्बोधन का स्वर भी बहुत पहले से उनकी काव्य संवेदना का अंग रहा है, बल्कि उनकी पहली प्रकाशित कविता मातृभूमि ही है। माता के रूप में भारती का यह अस्तवन कितनी ही कविताओं में आगे चलकर अभिव्यक्त होता रहा है। मातृभूमि भाषिक संरचना की दृष्टि से काफ़ी कमजोर कविता है, लेकिन वही विषय वस्तु और वही संवेदना आगे चलकर भारत जय विजय करे या नर जीवन के स्वार्थ सकल जैसी अनेकानेक कविताओं में विकसित और प्रतिफलित हुई है। मातृभूमि कविता की कुछ पंक्तियाँ इस संदर्भ में दृष्टव्य हैं। बंधु मैं अमल कमल चिर सेवित चरण युगल मुकुट शुभ्र हिमागार हृदय बीच विमल हार पंच सिंधु ब्रह्मपुत्र रवित नया गंगा विघ्न विपिन राजे घन घेर युगल जंघा। त्रिदश कोटि नर समाज पृष्ठ संख्या 21। मधुर कंठ मुखर आज चपल चरण भंग नाच तारा गण सूर्य चंद्र चूम चरण ताल मार गरज जलधि मधुर मंद्र। अब इसी के समानांतर भारत जय विजय करे कि कुछ पंक्तियों को मिलाकर देखें तो कवि के इस प्रारंभिक प्रार्थना पूर्ण राष्ट्रीय उद्बोधन की संवेदना का विकास सहज ही लक्षित हो जाएगा। भारती जय विजय करे कनक शस्य कमल धरे लंका पद तल शत दल गर्जितोर्मि सागर जल धोता शुचि चरण युगल अस्तो कर बहु अर्थ भरे तरु तृण वन लता वसन अंचल में खचित सुमन गंगा ज्योतिर्जलकण धवल धार हार गले मुकुट शुभ्र हिम तुषार प्राण प्रणो ओमकार ध्वनित दिशाएं उदार शतमुख शतरो मुखरे। पंक्तियों और शब्दावलियों का साम्य इन दोनों कविताओं में दृष्टव्य है। मुकुट शुभ्र हिमागार की जगह दूसरी कविता में कवि ने हिम तुषार कर दिया है। इसी तरह गर्जितोर्मि सागर जल पहली कविता में गरज जलधि मधुर मंद्र का ही विकसित रूपांतर है। दूसरी कविता की भाषिक संरचना अधिक गहन सूक्ष्म तथा अर्थ संभार को अधिक गहराई से व्यक्त करने वाली है। इसी तरह इस रचना स्तर का प्रतिफल अनेकानेक मातृवंदनाओं में अलग अलग रूपों में हुआ है। विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों की गुलामी से मुक्ति का जो आह्वान जागो फिर एक बार या प्रकांतर में शिवाजी का पत्र या तुलसीदास में प्रतीकात्मक ढंग से कवि ने किया है उस संवेदना दृष्टि का प्रारंभ शुरुआत की कुछ कविताओं में देखा जा सकता है। चूम चरण मत चोरों के तू गले लिपट मत गोरों के तू। पृष्ठ संख्या 22 में अपने सहज विवरणात्मक ढंग से अनुभव का यह छोर निराला ने पकड़ने की कोशिश की है। चोरों के चरण चूमने वाले या गोरों के गले लिपटने वाले लोगों के हाथों भोले भाले जनसाधारण की दुर्गति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण दगा की तारे गिनते रहे खेल देवी सरस्वती छलांग मारता चला गया डिप्टी साहब आए जैसी कविताओं में आगे चलकर हुआ है। विषय वस्तु भाव संवेदना और भाषिक संरचना की एक रूपता को दृष्टि में रखकर निराला ने अपने काव्य संग्रहों का प्रकाशन नहीं करवाया है। प्रथम संग्रह अनामिका के बाद प्रकाशित होने वाले संग्रह परिमल में भी कविताओं का 3 खंडों में जो विभाजन किया गया है वह सिर्फ छंद विधान को दृष्टि में रखकर ही निराला ने किया है। संवेदना की दृष्टि से एक खंड की कविताएं दूसरे खंड की कविताओं से अलग अलग रचना स्तरों पर साम्य और वैभिन्न रखती हैं। यही बात भाषिक संरचना को ध्यान में रखकर भी कही जा सकती है। अधिवास और अध्यात्म फल यहाँ अलग अलग खंडों में रखी गई हैं, लेकिन उनकी भाषा का स्वभाव एक दूसरे के निकट पड़ता है। इसी तरह पहले खंड की कविता प्रार्थना और दूसरे खंड की कविता भर देते हो कि भाव संवेदना एक दूसरे के काफी पास है। इसी तरह के दूसरे उदाहरण भी आसानी से ढूंढ निकाले जा सकते हैं। उनका तीसरा काव्य संग्रह अनामिका तो रचना के अनेक स्तरों की क्रियाशीलता और वैविध्य का और भी अच्छा उदाहरण है। एक ओर यदि उसमें मित्र के प्रति जैसे व्यंग्य हैं, तो दूसरी ओर राम की शक्ति पूजा है, तीसरी ओर सरोज स्मृति है, तो फिर सितार संवार लो और उक्ति जैसे गहन गीत हैं। एक ओर वसंत की परी के प्रति वारिद वंदना वन बेला है, तो दूसरी ओर तोड़ती पत्थर और वह किसान की नई बहू की आंखें हैं और मरण दृश्य हताश और ठूंठ जैसी कविताएं हैं। गीतिका के गीतों की रचना मुख्यतः ताल सुरों को ध्यान में रखकर की गई है, किंतु संवेदना और भाषा के लिहाज से उसमें भी अलग अलग जमीन की रचनाएं हमें बराबर मिल जाती हैं। यही हाल अरिमा का भी है। यदि एक ओर उसमें स्नेह निर्झर बह गया है और मैं अकेला जैसे आत्म साक्षात्कार के करुण और हिला देने वाले गीत हैं, तो दूसरी ओर चूंकि यहाँ दाना है, सड़क के किनारे दुकान या है बाजार जैसी जनसाधारण के बिंब चित्र वाली कविताएं हैं, तो स्वामी प्रेमचंद जी महाराज जैसी लंबी कथात्मक कविता भी है और प्रसाद रामचंद्र शुक्ल महादेवी वर्मा संत कवि रविदास और विजय लक्ष्मी पंडित के प्रति श्रद्धा कविताएं भी हैं, भगवान बुद्ध के प्रति जैसी उद्बोधनात्मक कविता भी है और भाव विह्वल प्रार्थना गीत भी है। जबकि ये सारी कविताएं 1939 से 1943 के बीच में ही लिखी गई हैं। पृष्ठ संख्या 23। भाव संवेदना और भाषिक संरचना की दृष्टि से एक ही जमीन की कुछ कविताओं का पहला संकलन सिर्फ कुकुरमुत्ता है, लेकिन अपने दूसरे संस्करण में यह भी एक लंबी कविता रह गई और इसकी शेष 7 कविताएं निराला ने नए पत्ते संग्रह में सम्मिलित कर लीं। नए पत्ते संग्रह अवश्य कुछ दूर तक मेरी स्थापना के खिलाफ पड़ता है, क्योंकि इसमें लगभग एक ही स्वभाव और जमीन की कविताएं संकलित हैं, लेकिन उसमें भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति देवी सरस्वती तथा विवेकानंद की कविताओं के 2 अनुवाद उनकी विषयगत और भाषिक संरचना की एक रूपता को कुछ अंशों में खंडित अवश्य करते हैं। फिर बेला और नए पत्ते के बाद के चारों संग्रहों आराधना अर्चना गीत गुंज और सांध्य काकली में एकतनता खंडित हो जाती है और निराला की काव्य रचना के विविध स्वभाव और रचना दृष्टियाँ फिर झलक मारने लगती हैं। आराधना में प्रेम प्रार्थना परक तथा आत्म साक्षात्कार और ऋतु गीतों के साथ जैसे जो बन बान कूटता है खेत जोत कर आए हैं, मानो जहाँ बैल घोड़ा है, और खिरनी के पेड़ तले जैसी अभिजात काव्य दृष्टि को ध्वस्त करने वाली भाव संवेदना की कविताएं भी हैं। यही स्थिति अर्चना गीत गुंज और सांध्य काकली की भी है। इस तरह सिर्फ नए पत्ते संग्रह को छोड़कर शेष सारे संग्रह निराला के काव्य रचना के संबंध में मेरी सही अध्ययन दृष्टि की स्थापना के उदाहरण स्वरूप उद्धृत किए जा सकते हैं। इस प्रकार इस स्थापना के बाद छायावाद के दूसरे प्रमुख कवियों प्रसाद पंत और महादेवी के साथ निराला की रचना प्रक्रिया की वास्तविक स्थिति को यदि रेखाचित्रों के माध्यम से दिखाया जाए तो वह इस प्रकार होगी। प्रसाद एक लंबी रेखा और एक 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा ऊपर को। पंत एक लंबी रेखा और पांच रेखाएं 60 अंश का कोण बनाती हुई ऊपर को। महादेवी एक लंबी रेखा। निराला एक तरंगित रेखा। प्रसाद ने अपना साहित्यिक जीवन ब्रजभाषा में काव्य रचना से शुरू किया। इस शुरुआत से कामायनी की रचना तक पहुँचना एक प्रकार से तलहटी से शिखर तक पहुँचना है। प्रसाद के काव्य में और उनकी रचना प्रक्रिया में यह सीधी उठान आसानी लक्ष्य की जा सकती है। भाव संवेदना, शिल्प और भाषिक संरचना सभी धरातलों पृष्ठ संख्या 24 पर उनकी रचना प्रक्रिया का विकास समान एक रूपता के साथ हुआ है। कानन कुसुम और करुणालय से लेकर झरना आंसू और लहर से होकर ऊपर की ओर उठती हुई क्रमशः समान गंभीरता और सूक्ष्मता के साथ विकसित होती हुई उनकी रचना प्रक्रिया की एक तान और एक मुख दिशा को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके अलावा प्रसाद एक विशिष्ट जीवन दर्शन के कवि हैं। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व तथा दर्शन के गहन अध्ययन के आलोक में उन्होंने अपना यह विशिष्ट जीवन दर्शन निश्चित किया है। इसे उपलब्ध करने के लिए वह भाषा और प्रगीत के सुंदरतम और मधुरतम स्वरावरोहों और ध्वनि छवियों का उपयोग करते हैं और इनके सहारे कविता के माध्यम से उन्होंने अपने उस विशिष्ट जीवन दर्शन को अंततः कामायनी के माध्यम से उपलब्ध और स्थापित किया है। इस तरह प्रसाद की कामायनी उनकी काव्य रचना के विकास का अंतिम और उच्चतम शिखर है। उनमें अपने लक्ष्य के प्रति कहीं भटकाव या संदेह नहीं है। अपनी गहनतम अनुभूति और उनकी संवेगात्मक उठान में तथा भाषा प्रयोग और अपने स्वनिर्मित जीवन दर्शन में उन्हें अगाध आस्था है और उनकी यही आस्था कामायनी की रचना के रूप में प्रतिफलित हुई है। निराला की तरह रचना के कई कई स्तर समान संवेगात्मक गरिमा और गहराई के साथ उनमें क्रियाशील नहीं दिखाई देते, बल्कि रचना प्रक्रिया का एक ही रूप करुणालय से लेकर कामायनी तक के सारे विस्तार में फैला हुआ विकसित होता हुआ ऊपर की ओर उठता जाता है। इसीलिए उनमें भाषिक संरचना की भी एक ही कोटि दिखाई देती है। विवरणात्मकता से बिंबात्मकता की ओर बढ़ने और ध्वनि लहरियों को और सघनता की ओर ले जाने की ओर यही प्रवृत्ति प्रसाद की भाषिक संरचना को समझने का मूल मंत्र है। इसीलिए निराला की तरह अपनी ही स्व अर्जित रचनात्मक समृद्धि को बार बार ध्वस्त करने का प्रयास भी उनमें कहीं नहीं दिखाई देता, बल्कि इसके ठीक विपरीत प्रसाद अपनी अर्जित रचनात्मक समृद्धि को संवेदना और भाषिक संरचना दोनों स्तरों पर और सघन करते जाते हैं। इस नज़रिए से देखें तो प्रसाद और निराला वास्तव में दो विभिन्न और विरोधी दिशाओं, धरातलों और लक्ष्यों के कवि हैं और उनमें साम्य की जगह वैषम्य ही अधिक लक्षित होता है। लेकिन प्रसाद की तरह पंत में एक ही शिखर नहीं है, छोटे छोटे कई शिखर हैं। पंत एक बहुत जागरूक, सक्षम और समय की गति पहचानने वाले अध्ययनशील कवि हैं। वह लगातार बाह्य विचारों और सिद्धांतों, काव्य रूपों और रचनात्मक स्थितियों को आत्मसात करते रहे हैं और उनके अनुकूल अपनी काव्य दृष्टि में समय समय पर पृष्ठ संख्या 24 परिवर्तन करते रहे हैं। पंत में निराला की तरह अनेक रचना स्तर सदा साथ साथ क्रियाशील नहीं दिखाई देते, बल्कि इसके ठीक विपरीत एक काल विशेष तक एक ही रचना दृष्टि उनमें क्रियाशील रहती है और उसे एक खास स्थिति तक पहुंचाकर पंत उसे छोड़ देते हैं और फिर नए सिरे से एक नई अनुभव संपदा और नई भाषिक संरचना को अपनाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन फिर इस पर भी वह ठहरते नहीं। ऐसा शायद इसलिए होता है कि वह किसी नए विचार के संपर्क में आने पर अत्यंत तीव्रता के साथ उसे अपनी रचना में ढालने की कोशिश करते हैं और अपनी पिछली रचनात्मक दृष्टि का उतनी ही तेजी से परित्याग भी कर देते हैं। या शायद रचना प्रक्रिया के विशेष रूप का संरचना के स्तर पर प्रयोग करते करते वे एक ऊब महसूस करते हैं और बड़ी तेजी से पुनरावृत्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। इससे मुक्ति के लिए वह नई रचना दृष्टि अपनाते हैं। पंत जब अपनी रचना प्रक्रिया और उसके अंतर्गत की उपलब्धियों को विभिन्न चेतना खंडों, सौंदर्य चेतना, भू चेतना, सूक्ष्म चेतना और बुद्धि चेतना में विभाजित करते हैं, तो शायद उनका इशारा कालक्रम के आधार पर उपलब्ध अपनी इन्हीं रचना दृष्टियों को रेखांकित करने की ओर है। इस दृष्टि से देखें तो पंत की कविता में कई शुरुआतें हैं और कई अंत हैं। प्रसाद की तरह एक ही शुरुआत और एक ही अंत वहाँ नहीं है, ना ही निराला की तरह। रचना प्रक्रिया के अनेक उद्वेलन हर समय उन्हें विविध प्रकार की रचनाओं के लिए आंदोलित करते रहते हैं। एक समय विशेष में एक ही विशेष ढंग की रचना में वे पूरी तरह संलग्न दिखाई देते हैं। इस दृष्टिकोण से देखें तो निराला फिर पंत के भी विपरीत दिशा के कवि सिद्ध होते हैं। जहाँ निराला की रचना प्रक्रिया के विकास के अध्ययन के लिए कालक्रम का आधार एकदम बेमानी साबित होता है, वहीं पंत की रचना प्रक्रिया को समझने के लिए कालक्रम का आधार ही सबसे उचित, ठोस एवं वैज्ञानिक आधार साबित होता है। वीणा ग्रंथि, पल्लव और गुंजन 1916 से 1932 तक सौंदर्य चेतना काल की रचनाएं हैं, तो युगांत, युगवाणी और ग्राम्या भू चेतना काल की 1932 से 1942 अर्थात पल्लव या बीड़ा या गुंजन की रचनाएं अपनी भाव संवेदना और भाषिक संरचना में समान धर्मी रचनाएं हैं। गुंजन के बाद अचानक पंत अपनी इस संवेदना और भाषिक संरचना को पूर्णतया त्याग कर ग्राम्या की भूमि पर उतर आते हैं। सहसा यह लगता है कि ये दो पृथक कवियों की रचनाएं हैं। पंत पलट कर कभी भी पल्लव या गुंजन की जमीन पर नहीं लौटते और न ही स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूल से फिर ग्राम्या की भूमि पर ही वापस आते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इस नज़रिए से निराला पंत से भी अलग और सर्वथा विरोधी दिशा के कवि ठहरते हैं। छायावाद के नाम पर इन चारों कवियों को एक ही तुला पर तोलने की जो पृष्ठ संख्या 26 लगातार कोशिश की गई है, जब आज हम उनकी असलियत को इस नज़रिए से परखने बैठते हैं तो कितनी हास्यास्पद और तर्कहीन लगती है। महादेवी की रचना प्रक्रिया की विकास दिशा समझने के लिए इतना तरद्दुद नहीं करना पड़ता। उनका विकास एकतान, सीधा, सहज और सर्वत्र समान है। ना तो निराला की तरह वहाँ लहरें हैं, ना पंत की तरह कई शुरुआतें और ना प्रसाद की तरह सजग, निर्मित जीवन दर्शन और विराट काव्य उद्देश्य। मनस्ताप की गहन, सूक्ष्म और बहुरंगी अभिव्यक्ति ही महादेवी के काव्य का प्रमुख लक्ष्य है। एक सर्वांतिक उदासी और गहरी वेदना की बहती हुई सूक्ष्म लय निहार से लगातार दीपशिखा तक के गीतों में सर्वत्र समान रूप से परिव्याप्त है। जीवन विरह का जलजात और मेरी करुणा मुख देख लेते ही उनके काव्य की मुख्य संवेदना है। इसी को महादेवी ने अनेक विध छविमय बिंबों में आंका है। भावना की गहनतम सच्चाई ही उनकी कविता का सबसे प्रमुख गुण है और यह सच्चाई उनके सारे संग्रहों में समान रूप से विद्यमान है। इसीलिए महादेवी की रचना प्रक्रिया के विकास को समझने के लिए सीधी सरल रेखा ही पर्याप्त है। जो उनकी शुरुआत है वही उनका अंत है, और जहाँ उनका अंत है वही उनकी शुरुआत भी है। इलियट का कथन है कि सिंगल कॉमा मेरे प्रारंभ में ही मेरा अंत है, सिंगल वर्ड कॉमा बंद। महादेवी की रचना प्रक्रिया के विकास को समझने और उसे रेखांकित करने में एक सूत्र की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन भावना की गहनतम सच्चाई के कारण यदि निराला के अंतः संगीत के निकट इन सभी कवियों में कोई है तो वह महादेवी ही हैं। इन चारों कवियों की रचना प्रक्रिया के विकास को समझने के लिए जिन रेखाचित्रों का आधार मैंने लिया है उनमें निराला की रचना प्रक्रिया वक्राकार आरोह अवरोह की रेखाओं में इसलिए दिखाई गई है कि रचनात्मकता के विभिन्न लहरें सदा उनकी रचनात्मक प्रतिभा का अंग रही हैं। ये लहरें न कभी टूटती हैं, ना उनमें कोई दरार पड़ती है। वे अपने वक्राकार हरे हरे शिखर बनाती चलती हैं। तेजस्विता का नुकीलापन नहीं बल्कि आत्मीयता की गोलाई और सुघड़ कटाव है। उनमें प्रसाद की तरह एक ही शिखर की ओर सजग उन्मुखता नहीं है, बल्कि एक आंतरिक सहजता और आत्म साक्षात्कार की प्रवृत्ति हर आरोह और हर ढलान पर अनेक ध्वनियों और छवियों में मुखरित होती रहती है। उनमें पंथ की तरह अलग अलग समयों पर अलग अलग शुरुआतें और अलग अलग अंत भी नहीं हैं, बल्कि एक ही साथ अनेक शुरुआतें हैं जो उनके जीवन के साथ जहाँ हैं वहीं रुक जाती हैं। उनका कोई स्वाभाविक और सजग अंत कहीं नहीं दिखता, बल्कि उनकी एक अनंत प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। पृष्ठ संख्या 27। निराला की काव्यात्मक उपलब्धि उनकी शुरुआतों का कहीं अंत ना होना ही है। उनकी कविता का सजग सचेत अंत कहीं नहीं होता। वह लगातार अपनी अर्थ छवियों और अपने मौन मध से पाठक को आंदोलित करती चलती है और एक सर्वथा नए असंतोष का सृजन करती है। इस रूप में निराला का कहीं भी अंत नहीं होता। उनकी रचनात्मकता का कोई अंतिम पूर्ण विराम नहीं है। इस दृष्टि से सिर्फ महादेवी ही कुछ हद तक उनकी समान धर्मा है। निराला की हर रचना एक संपूर्ण स्वतंत्र जीवन दृष्टि है। वे अपने समकालीन इन तीनों कवियों की अपेक्षा अधिक आत्मस्थ, निजत्वपूर्ण और गतिशील कवि हैं। यद्यपि उनका काव्य अर्थ प्रसार से एक सनातन मौन की ओर ले जाता है, इस रूप में वह रविंद्रनाथ, वात्लेयर, जॉर्ज सेफ्रिस, पास्टरनाक और एजरा पाउंड के अधिक निकट लगते हैं, जो कि रविंद्रनाथ और पाउंड को छोड़कर इन दूसरे कवियों में संरचना का इतना वैविध्य नहीं दिखाई देता। अर्थ प्रसार के सनातन मौन की ओर जाते हुए किस तरह शब्द संक्षिप्तम बिंबों में बदलते गए हैं, छंद किस तरह संक्षिप्त होते गए हैं और अर्थ की जगह किस तरह एक सूक्ष्म व्याकरणहीन अर्थ रहित निरर्थक नहीं लय ले लेती है। यह सांध्य काकली की निम्नलिखित कविता से लक्षित किया जा सकता है। जैसे निराला शब्दार्थ से आगे उस शब्दातीत लय के झीनेपन से खेल रहे हों। ताक कम सिनवारी, ताक कम सिनवारी, ताक कम सिनवारी, सिनवारी सिनवारी, इरावनी समक कात, इरावनी सम ककात, इराव निसम ककात, सम ककात सिनवारी।